অতি লাগে Thank you. प्रीत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत जयामुदीरये नष्टप्राये सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भागवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती न इष्टकी हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम पढ़ेंगे अध्याय कैंटो 10 अध्याय 7 श्लोक 12। पूर्ववत स्थापितं गोपे बलिभिः स्वपरिच्छदम् विप्राहुत्वा अर्चयाम् विप्राहुत्वा अर्चयाम् विप्राहुत्वा अर्चयाम् चक्रु दधि अक्षत कुसाम्भुवि पूर्ववत् स्थापितं गोपे बलिभिः स्वपरिच्छदम् विप्राहुत्वार्चयाम चक्रु दधि अक्षत कुसाम्भुवि पूर्ववत् स्थापितं गोपे बलिभिः स्वपरिच्छदम् विप्राहुत्वार्चयाम चक्रु दधि अक्षत कुसाम्भुवि श्लोकों का शब्दार्थ ऐसे हैं, मेरे पीछे कृपया बोलिए। पूर्ववत् जिस तरह छकड़ा पहले रखा था स्थापितं फिर से बर्तन भांडे सजाकर गोपे ग्वालों द्वारा बलि भी बलि या बलवान सपरिच्छदम सारे साध समान सहित विप्रा ब्राह्मणों ने हुत्वा अग्नि उत्सव करके अर्चयम चक्रु अनुष्ठान संपन्न किया दधि दही अक्षत चावल कुश घास अम्बुभी जल से। ट्रांसलेशन इन पर्पट ही डिवाइन के श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की ट्रांसलेशन। जब अरिष्ट ग्वाले ने बर्तन भांडे भांडो तथा अन्य सामग्री को छकड़े के ऊपर पहले की भांति व्यवस्थित कर दिया तो ब्राह्मणों ने बुरे ग्रहों को शांत करने के लिए अग्नि यज्ञ का अनुष्ठान किया और तब चावल कुश जल तथा दही से भगवान की पूजा की। तात्पर्य, छकड़े पर भारी बर्तन भांडे तथा अन्य सामग्री रखी हुई थी। इस छकड़े को पूर्व स्थित में लाने के लिए काफी बल की आवश्यकता थी, किंतु ग्वालों ने इसे सरलता से संपन्न कर लिया। फिर गोप जाति की प्रथा के अनुसार संकटमय स्थिति के समान हेतु विविध वैदिक अनुष्ठान किए गए। ओम ज्ञान तिमिरांगस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरो निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोवीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहं श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुर् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगण ललिता सिविशाखानुतंश। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। सत्कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो श्री सुखदेव गोस्वामी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है बड़े ही रसप्रद है। और भागवत के शुरू में वो बात को भी बताया गया है। सुखमुख अमृत है भगवान की कथा, जब भक्तों के मुंह से सुनते हैं, खास करके शुद्ध भक्तों के मुख से, तो ये अमृत से भी कम नहीं है, अमृत की बराबर है। और यदि कोई व्यक्ति अमृत को पान करना कान करने का कला तो जान लिया और पान करने के लिए योग्य बन गया, तो उनका भवसागर से भगवान उनको तार देते हैं, भवसागर से उनका उद्धार हो जाता है। तो खास करके परीक्षित महाराज का अपेक्षा थी, कैसे मैं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को श्रवण करूं। और सुखदेव गोस्वामी का परीक्षित महाराज का ये इच्छा को उनके गुरु अच्छी तरह से जानते हुए किस प्रकार अति चमत्कारी ढंग से, किस प्रकार अति भक्ति भाव से, जिस प्रकार परंपरा के द्वारा और उनके श्री सुखदेव गोस्वामी अपने पिताजी से सुने थे भगवान श्री कृष्ण की कथा को, ठीक उसी प्रकार की प्रस्तुत कर रहे हैं परीक्षित महाराज के समक्ष में। तो वही कथा को आज भी हम बैठकर यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। तो एक के बाद एक भगवान के ऊपर जो विपत्ति आपत्ति आ रही थी, तो ये सब देख करके ब्रज के लोग बड़े सरल थे और ताजुब हो गए। छोटा सा बालक के ऊपर इस प्रकार का बार बार उतना जैसे राक्षसी और इसके बाद शकटासुर माँ ने सुला दिए थे और भगवान श्री कृष्ण सोए हुए थे, अचानक इस प्रकार का एक बहुत बड़ा असुर का जब बध हो जाती है, और सकटासुर का जब वध हो जाती है और वो आवाज को सुनकर, जब खास करके माँ श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्रील प्रभुपाद की, जब सकटासुर का वध हो जाती है तो वहां पर पिताजी नंद महाराज, बाबा नंद और माँ यशोमती मैया वहां पर आकर के जब देखते हैं इतनी बड़ी सकटा जो छकड़ा खड़ा हुआ था, अब इतने उजनदार वो छकड़ा था, और छोटा सा बालक उनके नीचे है, और छोटा सा बालक नीचे है छकड़ा के नीचे, और पूरा छकड़ा चूर चूर होकर के इधर उधर फैला हुआ है, और वो बालक, छोटा सा बालक और छकड़ा के नीचे, हाँ बिखरे हुए छकड़े के नीचे सो करके वो बड़े ही मुस्कान कर रहे, और वो मुस्कान सबको लुभाने वाली है। और ये जो मुस्कान छोड़ रहे थे भगवान, भले हालांकि नंद महाराज और सारे गोप और माँ ने, यशोमती मैया ने, वो देख के ताजुब है, हैरान है, हैरान है, लेकिन बालक जिसके साथ वो हुआ है वो हंस रहा है, होने वाला के साथ वो हंस रहा है, और देखने वाला बड़े ही भयभीत अवस्था में होकर के वो खड़े हुए हैं खड़े हुए हैं। यही ही भगवान की अचिंत्य अतीब बड़े अद्भुत लीला है। लीला करने वाला वो आनंद में है, और जो लीला को देखते हैं वो देखते रह जाते हैं, ये कैसे है, क्योंकि भगवान करते हैं, भगवान जो कार्य करते हैं तो उनका वो कार्य के पीछे, कार्य के साथ एक अद्भुत आकर्षण रहता है। ये अद्भुत चीज ऐसे की अद्भुत चीज है जो चीज सारे जगत को मोहित करने वाला है, और सबका मन को हरने वाला है, और सबका मन को आकर्षण करने वाला है। भगवान के कार्य ऐसे होते हैं। तो हालांकि नंद महाराज, यशोमती मैया भगवान के पार्षद है, भक्त होने के बाद भी, पार्षद होने के बाद ही, भगवत पार्षद होने के बाद भी, तो भगवान के कार्य को नहीं समझ पाते, इसीलिए कि ये लीला की रस की और दुगुना हो, जो लीला का रस है वो दुगुना बढ़ जाए, इसीलिए भगवान अपने भक्तों को भी अपने लीला, ऐसे तो बहुत ही वादी लोगों तो ऐसे रहते हैं, मोहित रहते हैं, भगवान अपनी लीला के द्वारा भी भगवान अपने भक्तों को भी मोहित कर देते हैं। जब नंद महाराज और यशोमती मैया देखें कि मेरा छोटा सा बालक और उनके पर इतने बड़ी बात हो गई है, तुरंत नंद महाराज ने सोचे कि ब्राह्मण को बुलाया जाए, जो वेदों के अनुरक्त, वेदों के वैदिक अनुगत, वेदों के अनुगत ब्राह्मण को बुलाया जाए। और बड़ी उम्र में नंद महाराज और यशोमती मैया भगवान को पुत्र के रूप में पाए थे, और इतने बड़ी उम्र में जब पाए थे कृष्ण को पुत्र के रूप में, सारे प्रेम, सारे आसक्ति, सारे लगाव, सारे आकर्षण वो कृष्ण में ही लगा दिए थे, कृष्ण में ही लगा दिए थे। और जब इस प्रकार का घटना देखें तो नंद महाराज तुरंत सोचे कि अभी ब्राह्मण को अभी ब्राह्मण को बुलाया जाए, क्योंकि नंद महाराज जानते थे और नंद महाराज हमेशा सोचते थे, क्योंकि उसके पहले कई बात हो चुका था। तो नंद महाराज जब देखते थे कि मेरे पुत्र के ऊपर जब कुछ होता है, ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, क्योंकि नंद महाराज जानते थे, शुद्ध ब्राह्मण के शक्ति को जानते थे, नंद महाराज ब्राह्मण के शक्ति को जानते थे, और जब इस प्रकार हुआ करता था वो ब्राह्मण को बुलाते थे। ब्राह्मण जब आकर के कुछ करते थे तो फिर नंद महाराज को बड़े ही, क्योंकि देख रहे थे मेरे छोटे से बालक के ऊपर ये जो कुछ हुआ ये कोई सामान्य बात नहीं, कोई भूत प्रेत क्या अशुभ ग्रह का प्रभाव है, अशुभ ग्रह और ये अशुभ प्रभाव को निकालने के लिए नंद महाराज ब्राह्मण को बुलाते थे। अरे यदियो भगवान के ऊपर कोई अशुभ ग्रह और भूत प्रेत कुछ काम नहीं करता, फिर इस प्रकार जो लोग हरिनाम करते हैं, हरिनाम करने वाला व्यक्तियों के ऊपर भी कोई भूत प्रेत कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होता है, और वो तो साक्षात भगवान है, उनके ऊपर क्या भूत प्रेत क्या अशुभ ग्रह का प्रभाव होगा। लेकिन नंद महाराज पिता के हृदय होने के नाते और अपने छोटे से बालक के ऊपर वात्सल्य स्नेह पुत्र प्रेम होने के नाते अपने मन को समझाने के लिए तो वो ब्राह्मण को बुला करके वो अशुभ ग्रह अशुभ प्रभाव को वो निकालने के लिए कोशिश कर रहे थे। हाँ, लेकिन जहां पर भागवत है, भक्त है, अर्चा विग्रह है, हरि नाम हो रहा है, वो जगह पर कोई ये सब नहीं चलता है। जब प्रभुपाद जी इलाहाबाद में थे और भागवत की रचना कर रहे थे तो लोग कहते थे, ओ स्वामी जी वो कोठी में मत जाइए, वहां पर वो कोठी में भूत रहता है। तो प्रभुपाद जी बोले, चलेगा, तो भूत को भी मैं पाठ पढ़ा दूंगा। तो ये बोल करके प्रभुपाद जी भूत रहने वाला कोठी में जब गए, और रात को उठ करके प्रभुपाद जी का अभ्यास था भागवत लिखने का, और जब प्रभुपाद जी भागवत लिखने बैठे तो वो भूत आके प्रभुपाद जी को डिस्टर्ब करने लगा, परेशान करने लगा। तो प्रभुपाद जी बोले, डिस्टर्ब मत करो, चुप की बैठ जाओ। तो भूत भी वहां पर बैठ गया। हाँ, तो पता नहीं प्रभुपाद जी ऐसे कितने भूतों को भी उद्धार कर दिए, हमें मालूम नहीं इस प्रकार कितने भूतों को प्रभुपाद जी ने उद्धार कर दिए होंगे। तो कहने का अर्थ यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी ये बताना चाहते हैं, यदि कोई ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल जाए, कि ब्राह्मण जब कोई व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न हो जाता है तो भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति के ऊपर ब्राह्मण प्रसन्न हो जाता है तो समझना चाहिए वो व्यक्ति के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। हाँ, तो आज के ये प्रसंग के द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, ब्राह्मणों के कृपा से सारा संसार सुखी हो सकता है, ब्राह्मण के आशीर्वाद से सारा विश्व की कल्याण हो सकती है। हाँ, और श्री सुखदेव गोस्वामी ये बातों को बता करके वो मानव समाज को ये चेतावनी देना चाहते हैं, हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए ब्राह्मण को प्रसन्न करने के लिए। यहाँ पर स्वयं नंद महाराज ब्राह्मण को बुला करके भगवान को आशीर्वाद दिलाते हैं। और जहां पर स्वयं भगवान को ब्राह्मण का आशीर्वाद जरूरी है, तो सामान्य लोगों का बात क्या कहना है। जहां पर भगवान को ब्राह्मण का आशीर्वाद जरूरी है, तो हमारे जैसे लोगों को फिर कहना है क्या है। अब भगवान भगवत गीता में बताते हैं, तो ब्राह्मणों का ये गुण होना चाहिए, क्या? न सम दम तप शौच, ब्राह्मण के भीतर ये गुण होना चाहिए। और मुख्य रूप में ब्राह्मण के भीतर इंद्रिय संयम की गुण होना चाहिए मुख्य रूप से। और जब ब्राह्मण अपने इंद्रियों को संयम नहीं करता, तो दूसरों को पाठ नहीं पढ़ा सकता। इंद्रियों को जब तक संयम नहीं करता ब्राह्मण, जब तक अपने इंद्रियों को संयम नहीं करता वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। अब बिना इंद्रियों के संयम में वो ब्राह्मण के गुण भी उनके भीतर तो नहीं आएगा। और जब तक तो ब्राह्मण क्वालिटी नहीं होंगे, तो फिर वो भगवत विषय को सही सही समझ नहीं पाएगा। और जब तक तो वो भगवत विषय को सही सही नहीं समझ पाएगा, और फिर वो दूसरे को क्या मार्गदर्शन करेगा, सारा संसार को क्या बताएगा। इसीलिए ब्राह्मण का मुख्य काम, मुख्य कर्तव्य है, अपने इंद्रियों को पहले संयम करें। प्रभुपाद जी भी यही बात यही बात बताते हैं, जब तक ब्राह्मण शुद्ध नहीं होता तब तक वो दूसरों से धन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब तक ब्राह्मण शुद्ध नहीं होता, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तक एक ब्राह्मण शुद्ध नहीं होता वो दूसरों से धन नहीं ले सकता। हाँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अशुद्ध ब्राह्मण को ही दान दिया जाना चाहिए, भले वो ब्राह्मण कुल में जन्म हो ना क्यों। यदि वो शूद्र का कार्य करे तो धन नहीं ले सकता, दान ग्रहण नहीं कर सकता, और दान नहीं ले सकता। प्रभुपाद जी ने उसको घोर निषेध किए हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं ये बात को, समाज में चार वर्ग होना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं समाज में चार वर्ग होना चाहिए, लेकिन कलियुग में एक ही वर्ग है, शूद्र। कले शूद्र, प्रभुपाद जी बता रहे हैं चार वर्ग होना चाहिए, लेकिन कलियुग में एक ही वर्ग है। हाँ, सब शूद्र है। तो शूद्र मेंटालिटी, जो शूद्र जो होते हैं वो कुछ भगवान के विषय में समझ नहीं सकते। इसीलिए मैं भी लास्ट क्लास में मेरा भी ऐसे ही श्लोक था ब्राह्मण के क्वालिटी गुण के विषय में, क्वालिटी के विषय में, तो वो जगह में भी ये बताया था प्रभुपाद जी जब प्रभुपाद जी कह रहे थे आई एम मेकिंग सम ब्राह्मण, मैं कुछ ब्राह्मण बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आप प्रभुपाद जी जब यूरोपियन लड़कों को ब्राह्मण बना दिए तो भारत के तथाकथित ब्राह्मण लोग कहने लगे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो प्रभुपाद जी कहने लगे आप जो नहीं कर रहे हो मैं ही कर रहा हूं। प्रभुपाद जी कहे मैं जस्ट कुछ ब्राह्मण को बना रहा हूं, कुछ ब्राह्मण को बना रहा हूं। आप प्रभुपाद जी ये बात भी बताते थे कि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन जो है ये ब्राह्मण और वैष्णव का आंदोलन है। जो ब्राह्मण होता है वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, अपने काम वो करते रहता है, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता जो ब्राह्मण होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने दैवी वर्णाश्रम सिस्टम को पिस्तन में बताए थे। जो वेदों के प्रति रुचि है वो ब्राह्मण, और जो आके यहाँ पर ये माला कितने की है, झूली कितने के लिए व्यापार करेगा, हाँ वो वैश्य है। जो ऐसा प्रभुपाद ऐसे की प्रभुपाद जी जो भी कैसे भी गुण हो वो सबको भगवान की भक्ति में लगाए, और हर आश्रम के व्यक्ति भगवान का भक्ति शुद्ध भक्ति के अधिकारी है। लेकिन भगवान और प्रभुपाद जी भी ये बात बताते हैं जिसके भीतर जो गुण है वो गुण को विकसित करने की जो वो उपाय को जान लिया वो संसिद्धि हरितोषण, वो भगवान को संतुष्ट कर लेगा। कोई भी आश्रम खराब नहीं है, कोई भी आश्रम के व्यक्ति हो वही आश्रम में रह करके संसिद्धि हरितोषण वर्णाश्रम सिस्टम इतने शक्तिशाली मार्ग है, वो कोई भी मार्ग भगवान को भगवान के भक्त बनने के लिए वो सक्षम है। द्रौपदी जी और शास्त्र भगवान स्वयं कह रहे हैं वर्णाश्रम पुंगे दिव्य श्रेष्ठ ऐसा कुछ है, भारत में भी ये बात बताते हैं। लेकिन वो आश्रम के नियम को वो जो 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 आश्रम के है आज वो आश्रम संपूर्ण रूप में खत्म हो चुकी है। इसीलिए कोई भक्ति के अधिकारी भक्ति नहीं हो अधिकारी नहीं हो पा रहे, भक्ति नहीं कर पा रहे। और प्रभुपाद जी भी ये बात बताते हैं केवल ब्राह्मणों को ही गायत्री मंत्र जप करने की अधिकार है, और देवताओं के भी, ये दो लोगों को। हरिनाम कोई भी कर सकता है लेकिन गायत्री मंत्र का गायत्री मंत्र जप करने के जो अधिकार है प्रभुपाद जी लिखे हैं कि वो ब्राह्मण लोग कर सकते हैं। गायत्री मंत्र जप करने के लिए ब्राह्मण का क्वालिटी होना चाहिए, ब्राह्मण के गुण होना चाहिए, और हरिनाम जप करने के लिए कोई गुण न हो जप करने से गुण आ ही जाएंगे। इसीलिए इस कर्म में पहले हरिनाम दीक्षा दिया जाता है बाद में ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है। हरिनाम करने से जब गुण आते हैं आ जाता है व्यक्ति के भीतर तब जाके उनको ब्राह्मण का दीक्षा दिया जाता है। अब ब्राह्मण को कभी लालची नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण को कभी लोभ नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण को कभी भी लोभ नहीं होना चाहिए। और ब्राह्मण को ये बात अच्छी तरह से समझना है, ब्राह्मण को खास करके ये बात को अच्छी तरह से समझना है, ये संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान का है और प्रत्येक वस्तु भगवान को अर्पित होना चाहिए। और हर हर भक्तों को हमें ये ध्यान देना है, याद रखना चाहिए हमें हमारा आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये बात नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, यावत विद्यते दीयते जठरंग तावत स्वतंग ही देहिनाम अधिकं ही अभिमन्यते स्वतंग स्तेन दंडम आहति। एक व्यक्ति को उतना ही संपत्ति के ऊपर अपने स्वामित्व की दावा जतानी चाहिए जितने संपत्ति में उनका शरीर निर्वाह हो जाए, उससे अधिक के ऊपर यदि वो अपनी इच्छा को अपने स्वामित्व की इच्छा को दावा करता है, स्वामित्व की दावा करता है तो वे चोर है और प्रकृति के नियम के द्वारा दंडित होने की योग्य है। भगवान ने जहां पर पंखी मधुमक्खियों को भी जीवन की आवश्यकता दे रखे हैं तो फिर और जीवों को क्या है करना क्या है। जहां पर भगवान आहार निद्रा भय मैथुन आहार आवश्यक है, आहार निद्रा भय मैथुन हर जीवन में आवश्यकता है, और जहाँ पर भगवान पंखी मधुमक्खियों को ये बातें दिए हैं तो मनुष्य को क्यों नहीं दिए, ब्राह्मण और सारे जीवों को क्यों नहीं दिए। आर्थिक विकास की कोई आवश्यकता नहीं है, हर एक वस्तु पहले से दी हुई है, बस हमें इतना ही समझना है, बस हमें इतना ही समझना है कि हर वस्तु भगवान की है, बस इतना ही हमें जानना है। और मैं बताया अभी, जैसे ब्राह्मण के भीतर लोभ आता है उनका पतन हो जाता है, जैसे ब्राह्मण के भीतर लोभ होता है उनका पतन होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने सावधान कर दिया, जो भी कोई भक्त कृष्ण भावना अमृत संघ में लगा हुआ है और कृष्ण भावना अमृत संघ में लग करके वो धन संग्रह कर रहे हैं, वो तो सारे के सारे कृष्ण को दे देना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं वहां पर, यदि कोई भक्त एक छदाम भी अपने लिए इस्तेमाल करता है तुरंत उसका पतन हो जाएगा। कृष्ण भावना अमृत संघ में जुटे हुए भक्त जब धन संग्रह करते हैं, वो धन का एक छदाम यदि अपने लिए लगाता है तो उनका तुरंत पतन हो जाएगा। एक बार भीमा प्रभु आए थे, जो खारगर में रहते, सामदेव प्रभु भीमा प्रभु को पूछे कि प्रभु जी हमें जब धन संग्रह करने के लिए बाहर जाते हैं, गृहस्थ लोग हम धन देते हैं, क्या उस धन को हमें हमारे लिए इस्तेमाल कर देना चाहिए? तो भीमा प्रभु उनको बोले, जो भी हमें धन प्राप्त होती है पहले जमा करना चाहिए और वहां से हमारा जो चाहिए वहां से हमें लेना चाहिए। ये भगवान का संपत्ति को अपने जीवन में व्यवहार करने का एक तरीका, ये बात भीमा प्रभु एक भक्त को बता रहे, सामदेव प्रभु को बता रहे थे। और प्रभुपाद जी जब हम मायापुर में लगे हुए थे कार्य में, तो उस समय यहाँ सब प्रभुपाद जी धन के व्यापार में, क्योंकि प्रभुपाद जी कह रहे थे ये सब कृष्ण प्रॉपर्टी है, जब प्रभुपाद जी मायापुर में लगे काम में कार्य में लगे हुए थे, तो उस समय प्रभुपाद जी के पुत्र आया और बोला कि मुझे कुछ धन दे दीजिए। तो प्रभुपाद जी बोले, जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, आगे देखेंगे जो होगा। देखिए प्रभुपाद जी जो कि ये संस्था के मालिक है, वो क्या भी कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ नहीं है, हम क्या क्या कर लेते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति के जो आचार्य है, जो ये ये स्कंद जो ये कृष्ण भावनामृत संघ का जो बीज रोपण करने वाले हैं, तो ऐसे व्यक्ति के सामने अपने घर के लोग, अपने पुत्र जब आया धन मांगने के लिए, मुझे कुछ धन दीजिए, तो प्रभुपाद जी क्या जवाब दिए उनको, जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, बाद में देखेंगे, क्योंकि ये मेरा कुछ नहीं, ये कृष्ण का प्रॉपर्टी है, मैं उसको नहीं दे सकता, हाँ मेहनत करो बाद में देखेंगे। प्रभुपाद जी सीधा बोल दिया। अरे ये ब्राह्मण के भीतर जैसे ही लोभ आता है तुरंत तुरंत उसका पतन हो जाता है, तुरंत। जैसे ब्राह्मण लालची बन जाता है, उनके वाणी में जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। बलि महाराज जब क्या थे, भृगुवंशी ब्राह्मणों का, भृगुवंशी ब्राह्मण शुक्राचार्य का आदेश को जब बलि महाराज अवमानना करने का संकट को अपने पर लिया, भृगुवंशी ब्राह्मण शुक्राचार्य का आदेश का उल्लंघन करने का जब संकट उठाया, तो इस कारण से उनका उन बलि महाराज को अपने सारी संपत्ति खोनी पड़ी, उनके सारी संपत्ति को खोना हुआ, खो दिया। लेकिन भगवान के भक्ति में लगने के कारण उनको आशा से अधिक लाभ हुआ और भविष्य में आगे चल करके बलि महाराज को अठवा मनंतरों में इंद्र के सिंहासन में, सिंहासन के ऊपर आसीन वो होंगे। तो यहाँ पर दिखा जाता है, जो ब्राह्मण का शक्ति में, वाणी में, आदेश में इतने ताकत है, तो फिर बलि महाराज यहाँ पर भृगुवंशी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के कृपा से बलि महाराज जीवित हुआ, जीवन दान हुआ था, जीवन प्राप्त किया था, पहले समय ब्राह्मण में इतने तप शक्ति हुआ करता था, उनका भक्ति इतने बड़ा चढ़ा, इतना अधिक उनका तप करने की बल होता था, वो अपने तपस्या के बल के ऊपर वो मरे हुए लोगों को भी जीवित कर देते थे। जो देवताओं के गुरु बृहस्पति को जो मृत्यु संजीवनी विद्या पता नहीं होता था, पता नहीं था, वो मृत्यु संजीवनी विद्या भृगुवंशी ब्राह्मणों को पता होता हुआ था, और वो मृत्यु संजीवनी विद्या के द्वारा वो मरे हुए बलि महाराज को भी जीवित कर दिया। और ब्राह्मणों के तेज लेकर के जब बलि महाराज स्वर्ग पर पहुंचा तो इंद्र के राजा को देख करके ये तो एकदम कंपने लगा, ये क्या है, ये बलि महाराज के भीतर इतने तेज कहां से आया, वो तेज कहां बढ़ा, इतने बढ़ा चढ़ा तेज कहां से, कहां से प्राप्त हुआ था। क्योंकि राजा जब हार जाता है तो उनका सारा जस, सारा कीर्ति, सारा तेज घट जाता है। लेकिन तो ये अद्भुत बात, अद्भुत बात दिख पड़ती है, ये तो बलि महाराज कितने अद्भुत तेज, बताइए। इंद्र ने पूछा, बताइए आप ये कैसे हुआ। तो बृहस्पति जी वहां पर इंद्र को क्या बताएं कि ये भृगुवंशी ब्राह्मणों की तेज है, ये बलि महाराज का अपना नहीं, ये बलि महाराज का अपना कुछ नहीं है, वो भृगुवंशी ब्राह्मणों का तेज है, ये ब्राह्मणों की कृपा है, बलि महाराज के ऊपर भृगुवंशी ब्राह्मणों की कृपा है, इसलिए हटो, भागो, छुप जाओ, आप भाग जाओ। क्योंकि बृहस्पति जी ने, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने भविष्यवाणी कर दिए थे, आप अभी ये बलि महाराज के सामने टिक नहीं सकते, क्योंकि ये ब्राह्मण की कृपा लेकर के आया, ब्राह्मण की बल लेकर के आया है, तो आप छुप जाओ। अब ये बात भी भविष्यवाणी किए थे बृहस्पति जी ने, जब तक कोई ब्राह्मण के प्रति अपराध नहीं करता तब तक आप वो दृश्य हो जाएगी, छुप जाए। और सारे देवता लोग वही उपयुक्त अवसर कब आएगा अपेक्षा कर रहे थे, तो वहां पर बृहस्पति जी कहे थे, भविष्यवाणी किए थे, क्योंकि देख पा रहे थे आगे क्या होने वाली है, ब्राह्मण अपने ब्रह्म शक्ति के द्वारा देख पाते थे, वो देख पाता है आगे की बातें को देख पाता है, इसीलिए बृहस्पति जी ने भी भविष्यवाणी किए थे, ये बात होने वाली है, आप अपेक्षा करो। इसीलिए तो आपात दृष्टि से जब यदि देखा भी जाए, यदि भृगुवंशी ब्राह्मण ने, यहां पर देखा जाता है कि भृगुवंशी ब्राह्मण ने साफ दे दी, जाओ तुम कंगाल हो जाओ, भिखारी बन जाओ, फिर ये बलि महाराज को स्वर्ग में, स्वर्ग की सीट कैसे मिला, इंद्र की पोस्ट कैसे मिला, क्यों ना शुक्राचार्य जब बलि महाराज को इस प्रकार कह रहे थे, तो ये कहने के पीछे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ रखे थे, और जहां पर व्यक्तिगत स्वार्थ होती है तो वहां पर वो व्यक्ति का नाश हो जाता है, वो व्यक्ति का भले कोई भी हो, जब जहां पर व्यक्तिगत स्वार्थ होता है वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जब तक हमें भौतिक तरह से, भौतिक ये सब से जब तक हमें हमारा लेन देन को खत्म नहीं करते हैं, तब तक हम आध्यात्मिक चीज को देख नहीं पाते हैं, और खास करके आध्यात्मिक वस्तु को भगवत दर्शन के लिए हमें ब्राह्मण के गुण को विकसित करना चाहिए। जब तक एक व्यक्ति, और प्रभुपाद जी बार बार कहते थे एक भगवत भक्त को बहुत ही सहनशील होना चाहिए, रूपा जी कहते थे एक भगवत भक्त को बहुत ही सहनशील होना चाहिए, और भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज ये बात बताते थे खाल के मठ में रहने वाले भक्तों को, आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारियों को इस सहिष्णुता गुण को बड़े बड़े कढ़ाई से सीखना चाहिए। भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज बताते हैं मठ में रहने वाले भक्तों को बड़े ही सहनशील होना चाहिए, और चैतन्य महाप्रभु भी यही बात बताते हैं। और जब तक हमें हमारे इंद्रियों को संयम नहीं करते हैं, सहनशील नहीं बनते हैं, तब तक हमें ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को आहरण नहीं कर सकते हैं, विश्रृंखलित इंद्रियों के द्वारा हमें दिव्य ज्ञान को समझ ही नहीं सकते, ना उनको हृदय में ले सकते हैं। जब तक हमारा मन विचलित है, विश्रृंखलित है, तब हमें गीता भागवत नहीं समझ सकते। इसीलिए और एक बात बताया जाता है, आज तो ब्राह्मण के ग्लोरिफिकेशन बताया, गुण की गान किया गया है आज के श्लोकों के द्वारा। हाँ, आगे चल करके ब्राह्मण का जो, ब्राह्मण को कैसे होना चाहिए उनका दोनों तरफ बताया गया है, आगे चौपाल जी भावार्थ में बताए हैं। हाँ, और भगवान भी यह बताते हैं, मैं यदि खाता हूं हाँ, किसके मुंह से? ब्राह्मण के मुंह से। आज यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण को ना भगवान को खिलाना चाहता है तो ब्राह्मण को खिला दीजिए। हाँ, अशुद्ध ब्राह्मण को बुला करके उनको खिला दीजिए। हाँ, और आप ये बात भी जानते हैं क्या, हरिदास ठाकुर के प्रसंग में, अद्वैत आचार्य के प्रसंग में जानते हैं, और ये प्रसंग भी पद्म पुराण में है। हाँ, स्वयं भगवान रामचंद्र हाँ पितृपक्ष में शुद्ध ब्राह्मण को बुला करके जब दे रहे थे तो ब्राह्मण के पीछे दशरथ महाराज खड़े हुए थे। पितृपक्ष, पितृ लोगों को तृप्त करना है तो शुद्ध ब्राह्मणों को बुला करके खिलाया दिया जाए, पितृ लोग संतुष्ट हो जाते हैं। जब भगवान राम जंगलवास कर रहे थे, वनवास कर रहे थे, तो दशरथ महाराज वहां पर वशिष्ठ मुनि, कोई वशिष्ठ नहीं और कोई बहुत सारे मुनि ऋषि लोग कहने से, तो भगवान पितरों को श्राद्ध अर्पण करते समय जब दे रहे थे तो महर्षियों के ब्राह्मण के पीछे अपने पितृ लोग खड़े होकर के वो ब्राह्मण के मुख से खा रहे थे। तो देवी सीता ये बात को देख लिए थे। तो अद्वैत आचार्य अपने पितृ श्राद्ध के दिन में हरिदास ठाकुर जी को बुलाए और सारे जो ब्राह्मण समाज के जितने थे अक्कड़ मार के बैठ गए, आज से उनको न्यायपानी बंद है, ये आचार्य को आज ही आचार्य का बुद्धि बिगड़ चुका है। और हरिदास ठाकुर जी भी ये बोले, आप क्या कर रहे हो, आपका सारे समाज आपका विरोध कर रहा है, मैं तो मुसलमान हूं। तो अद्वैत आचार्य बोले, मैं जानता हूं, अद्वैत आचार्य बोले, मैं जानता हूं आप मुसलमान हूं, लेकिन ये तथाकथित ब्राह्मण गोष्ठियों से कई बेहतर अच्छे हो आप, यदि आपको अकेले में खिला दूं, आपको यदि मैं अकेले खिला दूं, अकेले खिलाने का फल के द्वारा मेरे सारे पितृपक्ष भगवधाम चले जाएंगे। आपको अकेले खिलाने का, आप जैसे एक ब्राह्मण को खिलाने का लाखों ब्राह्मण को खिलाने का बराबर है, इसलिए आप चिंतित मत होइए, आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो सारे ब्राह्मण ब्राह्मण समाज जो थे तो एकदम ट्राइक एकदम बैठ गए एड़े होके, आज से उनको न्यायपानी देंगे नहीं देंगे, किसी के घर से आज से उसको न्यायपानी नहीं देंगे। तो हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य जैसे महान आचार्य ब्राह्मणों के प्रति इस प्रकार का दोष युक्त भाव करने के कारण अपने अपने घर में जो आग था वो बुझ गई। पहले जमाने में ऐसे होता था, आग लेने के लिए कोई कोने में एक बर्तन में आग लगा के रखा जाता था और वही आग से ला करके जो भी बनाना होता था बनाते थे। लेकिन हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य के प्रति इस प्रकार भाव होने के कारण तो अपने अपने जितने सारे किए थे वो घर में आग बुझ गई। और जब आग बुझ गई वो क्या खाना पीना बनाएंगे, एक दिन दो दिन तीन दिन जब भूख प्यास में तड़पे बैठे हुए थे उनका घर में, और अद्वैत आचार्य के घर में आग नहीं बुझा, अद्वैत आचार्य के घर में जो आग जल रही थी वो नहीं बुझा, लेकिन बाकी सब लोगों का घर में आग बुझ गई। और तीन दिन जब हो गया पेट में लात पड़ी भूख में, जब गिड़गिड़ा बेचैनी हो गए, तब वही सारे के सारे अद्वैत आचार्य के घर में आकर के आग लेकर के अपने अपने घर में बनाए। तो यहां पर प्रमाणित हो जाता है एक सही वर्तमान समय में एक शुद्ध ब्राह्मण का कमी है। पीपल ऑलवेज वांट्स अ परफेक्ट लीडर, एक सही ब्राह्मण की आवश्यकता करते हैं वर्तमान के मानव समाज, लेकिन वही ब्राह्मण की कमी है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोले, आई एम जस्ट डेवलपिंग ब्राह्मणिकल क्वालिटी, मैं जस्ट कोशिश करना हूं ब्राह्मणिकाल गुण को लोगों के भीतर निकालने के लिए। तो आज भी श्री सुखदेव गोस्वामी और नंद बाबा ब्राह्मण का गुण के पर महत्ता दे करके यही बात को हर व्यक्ति को बताना चाहते हैं। कले प्रायण कल्पा अल्पायुष कलेयस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो नंद भाग्य। कलिजुग में सब हतभागा बन चुके हैं, लेकिन ऐसे हतभागा को प्रभुपाद ने सुभागा बना दिए, ब्राह्मण बना करके सुभागा बना दिए। और ऐसे ब्राह्मण आज सारे शूद्रों को ऐसे कृष्ण भावना मृत में प्रभुपाद जी जो ब्राह्मण बना दिए, ये ब्राह्मण लोग आज जंगली लोगों को भी ब्राह्मण बना देते हैं। यूरोपियन जंगली लोग जंगल जंगली जंगली जैसे बात करते हैं, जंगली जैसे खा करके हाथ धोना नहीं जानते हैं। एक बार राधाविंद महाराज कहीं बाहर गए थे, बैठे हुए थे, तो आए का कोई बातचीत किया, ओ आप वही संस्था के हो जो संस्था में ज्यादा नहाते हैं, आप स्नान करने वाले संस्था के आदमी हो। तो इसीलिए मुस्लिम लोग जो कहते हैं अरे ज्यादा पुण्य मत करो, यदि भगवान हिंदुओं के परिवार में जन्म दे देगा नहाते नहाते थक जाओगे, क्योंकि ब्राह्मणों को खास करके तीन बार दिन में नहाना चाहिए, तीन बार नहीं दो बार नहीं तो एक बार कम से कम। अरे ये तो और कई 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 पुराणों में तो उनको पांच बार नहाने के लिए बताया गया है, जो ऊपर से बारिश होती है उसमें नहाना चाहिए। और कई कई विधि मार्ग बताया गया है। लेकिन यदि है कि कोई शुद्ध ब्राह्मण कोई घर के आंगन में अपने चरण का धूल को रख देता है, वो घर का आंगन पुण्य क्षेत्र बन जाता है। यदि कोई शुद्ध ब्राह्मण अपने चरण को रख देता है, अपने चरण का धूल को कोई घर के आंगन में रख देता है, तो वो शुद्ध ब्राह्मण के चरण के धूल के प्रभाव से वो घर का आंगन क्षेत्र पुण्य क्षेत्र पवित्र क्षेत्र बन जाए। पांच चीज को बड़े पवित्र से पवित्र माना गया है। जब तुलसी के पत्ते से जो पानी गिरता है, तुलसी के पत्तों से लग करके जो पानी गिरता है वो पवित्र से पवित्र माना जाता है। और गाय के सिंह से लगा हुआ जल जब गिरता है वो भी पवित्र से पवित्र माना जाता है। और शालिग्राम शिला को नहाने के बाद जो जल वो पवित्र से पवित्र माना जाता है। और ब्राह्मणों के चरण धोकर वो भी पवित्र से पवित्र माना जाता है। और बड़े बड़े गुरुजनों के चरणों के जो जल है वो भी पवित्र से पवित्र माना जाता है। तो शास्त्र में ये पांच वस्तु को पवित्र से पवित्र माना जाता है। तो ऐसे ब्राह्मण की कृपा की आकांक्षा लेकर के जगन्नाथ मिश्र श्रील प्रभुपाद भी तड़पते थे, आइए ब्राह्मण लोग आइए मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे दीजिए और राधारानी का भक्त बन जाए। तो आज हमें भी यही अभिलाषा करना चाहिए हमारे जीवन में ऐसे कि ऐसे एक शुद्ध ब्राह्मण प्राप्त हो जो ब्राह्मण के कृपा से हमें भगवत दर्शन हो जाए, हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य बने। तो यही आशा को रख करके हमें जब भगवान को प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से हमें ब्राह्मण की कृपा मिलेगा। और प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में और श्री सुखदेव गोस्वामी जी आज यही बात बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को यही तपस्या करना चाहिए, मेरे जीवन में कोई एक शुद्ध ब्राह्मण मिले, मुझे कोई एक शुद्ध ब्राह्मण का दर्शन हो जाए। तो यही इच्छा को रख करके यहीं पर रखेंगे। हरे कृष्ण। एक प्रश्न है या क्योंकि पहले क्लास भी ब्राह्मण के विषय में बताना था मुझे और ज्यादा कुछ मिला नहीं, जो थोड़ा मिला मैं बताया। ये सब बातें तो प्रभुपाद जी के बताए हैं, कोई भी देख सकते हैं। तो कुछ प्रश्न है, एनी कमेंट? यस सर। हाँ हमें तो ये बात बताया अभी। हाँ 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 तो जो लोग ब्राह्मण है ना, वो कहाँ से मुझे दक्षिणा मिलेगा, कहाँ से मुझे क्या जाबड़ा का रोटी मिलेगा, हाँ मक्खन मिलेगा, ये आशा में ढूंढना नहीं चाहिए। राधा मोहन महाराज एक बार उनके बता रहे थे, ब्राह्मणों को दक्षिणा कहाँ मिलेगा, खाने के लिए कहाँ मिलेगा, भागना नहीं चाहिए। आप जब आपका जो प्रश्न है कि ब्राह्मण को बुलाते हैं, दक्षिणा देते हैं, खाने के लिए देते हैं, हाँ ठीक है जाना चाहिए, हाँ अपने हाँ जितना चाहिए शरीर निर्वाह के लिए, मैं बताया अभी, हाँ ब्राह्मण को उतना ही संपत्ति ग्रहण करना चाहिए जितने में अपने शरीर का निर्वाह हो जाए, शरीर चल जाए, शरीर का पोषण हो जाए, उतने के लिए ही वो दान ले सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं लगे। लेकिन अपने से आवश्यकता से यदि अधिक वो कलेक्शन करता है, कि ब्राह्मण को तो पहले धन संचय करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अधिक यदि संचय करने लगता है तो ब्राह्मण नहीं है। और यदि धन राशि मिलता है, वो धन वो एक ईमानदार ब्राह्मण का पहला कर्तव्य होता है, ये वो धन को ला करके वो मंदिर में दे दे। सच्चाई हाँ वही है ना, कली हो गए ना,
लेकिन आज समाज का हिसाब से ब्राह्मण को दूसरा गुण को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें,
वही है
हमारा शास्त्र के हिसाब से बराबर नहीं।
हाँ बिल्कुल ये सुन जी, हाँ
तो अगर कोई वैष्णव को धर्म में जाके के पश्चात जाता है, वो भी वैष्णव होना चाहिए,
हाँ
तो उसमें पाप नहीं लगता है।
हाँ सही बात है,
क्योंकि वो उसको कल्याण के लिए करता है और थोड़ा घर में साथ ये तो उसका भक्ति करता है, थोड़ा देने की शक्ति रहती है,
हाँ हाँ वही है। तो प्रभु जी बताएं, वो ब्राह्मण इतना ये होना चाहिए, उनके भीतर इतना योग्यता होना चाहिए कि मैं गृहस्थों का दान को ग्रहण करके मैं डाइजेस्ट कर पाऊं, मुझे हजम करने की शक्ति होना चाहिए। जो दान लेने वाला है पहले अपने कल्याण तो करो, नहीं तो खुद को नहीं देखेंगे फिर बाजू वाले। कई बार प्रभुपाद जी बताए
गृहस्थ तो
चाहते हैं अपने कल्याण चाहते हैं, वो इसलिए वो हमेशा इच्छा करते हैं कि कोई भक्तों को बुलाए। हाँ हाँ ये तो सही बात आप जो बता रहे हैं, लेकिन गृहस्थों का ये एक इच्छा रहता है कि मैं भक्तों को बुलाऊं, कुछ उनको दान दूं, कुछ मैं उनको भोजन कराऊं, ये तो उन लोग का इच्छा रहता है। लेकिन दान लेने वाला भोजन ग्रहण करने वाला तो फिर देखना चाहिए ना, मैं दान वो ले उसका गृहस्थ का लेके हाँ वो गृहस्थ से दान लेके उनके घर से मैं भोजन ग्रहण करके क्या मैं उनका कल्याण कर सकता हूँ, ये योग्यता ये तप शक्ति मेरे भीतर है, ये तपस्या मेरे भीतर है, तो जी ये इतना पुण्य है, इतने भक्ति का शक्ति है, तो जाओ खाओ लो। प्रभुपाद जी कहते थे मैं सारा संसार का धन को मैं दो हाथ में लेने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए मैं कृष्ण को देना चाहता हूँ। इस प्रकार का मनोवृत्ति होना चाहिए। हर भक्तों का इस प्रकार का यदि भावना है, दो हाथ क्या है, हाँ और कुछ इधर बैग लगा दो इधर बैग लगा दो, बड़ा हाँ जितने धन कोई ग्रस्त देता है, हाँ दो पाकिट भर दो इधर पाकिट भर दो लेकर के कृष्ण को दे दो। अपने लिए यदि ले रहे हो तो तेरे सारा संसार को हम खत्म कर देंगे। ये हाँ हाँ पात्र को देना चाहिए। मैंने भी बताया पहले कि शुद्ध ब्राह्मण ही दान ले सकता है। हाँ ये
दान कोई
पति पत्नी को धन संचय करना पड़ेगा। हाँ 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 ये मठ में रहने वाले ब्राह्मण को संशय नहीं करना चाहिए, गृहस्थ ब्राह्मण के लिए बताया गया। गृहस्थ जो ब्राह्मण है तो गृहस्थ धर्म निभाया जाए, गृहस्थ धर्म कैसे चल जाए उतने ही रखना चाहिए, अधिक नहीं। बच्चों का घर का अपने चले हाँ चलने के मापी हाँ धन रखें तो फिर कोई पाप नहीं लगेगा। जो अधिक करता है जो अधिक आ भी जाता है तो मंदिर में ला के दे देना चाहिए, अपने रखना नहीं चाहिए।
भगवान आपने बताया कि भगवान ब्रह्मन की मुक्ति खाते हैं,
हाँ
तो ब्रह्मन ही की मुक्ति खाते हैं क्यों नहीं?
ना भगवान ब्राह्मण के मुख से खाते हैं। मैं प्रभुपाद जी का पढ़ा और कहीं और अलग अलग शास्त्र में अलग अलग जगह में बहुत बात बताया गया है।
भगवान गौ मुख से खाते हैं,
हाँ
और एक ब्राह्मण मुख से खाते हैं,
हाँ
एक अग्नि के मुख से खाते,
हाँ ये तो है तो अग्नि के मुख से, ब्राह्मण के मुख से, गाय के मुख से।
ब्राह्मण का मुख्य मंत्र क्या है?
ब्राह्मण के मुख्य मंत्र, ब्राह्मण के मुख्य मंत्र क्या है गुरु जी? ब्राह्मण का मुख्य मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके समय हो गया तो बाकी कोई सारे भक्तों का कीजिए।